जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भवतु मे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय मा सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम।
हरे कृष्णा। सारे भक्तों को रविवार की इस प्रीति भोज कार्यक्रम में स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से कुछ विषयों का चर्चा करेंगे। हम विचार किए भागवतम के सातवें स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं सभी के लिए, मानव समाज के लिए, और खास करके हम हरे कृष्ण भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस खास करके प्रहलाद महाराज की शिक्षा और साथ साथ के साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्य, ये अत्यंत ही हमारे जीवन के लिए, खास करके हमारे भक्ति के लिए ये आवश्यक है। तो हम आज प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर कुछ दृष्टि डालेंगे। हाल में ही नरसिंह चतुर्दशी हम लोगों ने मनाए, तो हम सब भक्तों ने भगवान नरसिंह देव के बारे में भूरी भूरी बातें, बहुत सारे भगवान नरसिंह देव की गुणगान को सुने, साथ साथ में हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को आज सुनेंगे। तो ये छठा अध्याय में शुरू से आखिरी तक प्रहलाद महाराज की शिक्षा है उनकी दोस्तों को। और प्रहलाद महाराज की उम्र क्या था उस समय? 5 साल है ना, लगभग 5 साल के उम्र में होते हुए भी प्रहलाद महाराज किस प्रकार से दिव्य उपदेशों को अपने दोस्तों को वो सुनाते हैं गुरुकुल में। इन सारे उपदेशों के बारे में और साथ साथ में इन उपदेशों के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से तात्पर्य लिखे हैं हम लोगों के लिए, उसका चर्चा करेंगे। खास करके मैं ज़्यादातर श्रील प्रभुपाद जी के उन तात्पर्यों के ऊपर ध्यान दूंगा या उसको पढ़कर सुनाने के लिए प्रयास करूंगा, जो कि हमारे भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है उसको जानना और उसी के हिसाब से हमारा जीवन जीना। उससे पहले मैं भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना करना चाहता हूँ। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नामस्ते जस तेजस आविर आविर्भव वज्र नख वज्रदंश कर्म सायन रंधय्य रंधय्य तमो ग्रास ग्रास। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मानि भूयिष्ठा। ओम शमो। श्री प्रहलाद महाराज की, नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो हम श्रीमद् भागवतों के छठे स्कंध से पढ़ना या श्रवण करना प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले या शुरू करने से पहले मैं उसकी कुछ भूमिका के बारे में बतलाऊंगा, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सभी ध्यान से उसका सुनेंगे। आप सबको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषयों का चर्चा होता है। कितने? 5। क्या क्या हो 5 विषय? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में इन 5 विषयों का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है पूरी भगवद गीता में। श्रील प्रभुपाद इसको अपने भगवद गीता की भूमिका में बतलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम में भी मुख्य 10 विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंद में कि श्रीमद् भागवतम में मुख्यतः 10 विषयों का वर्णन हुआ है। जैसे आप सब पहले सुने होंगे ये 10 विषय क्या क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में श्लोक आता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण उतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इन 10 विषयों के ऊपर श्रीमद् भागवतम में पूरा वर्णन हुआ है। जैसे भगवद गीता में 5 विषय है, वैसे भागवतम में 10 विषय है। तो ये 10 विषय एकदम सीरियल नहीं है, जैसे 12 स्कंद है तो 12 स्कंद में सीरियल ही नहीं है, ये क्रमानुसार नहीं है, इधर उधर है। जैसे दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में स्वर्ग के बारे में चर्चा किया गया, स्वर्ग और विसर्ग। स्वर्ग का मतलब सृष्टि, कैसे भगवान ने सृष्टि किया, और विसर्ग का अर्थ है कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया। दूसरे और तीसरे स्कंद में उसका वर्णन मिलता है। 8वें स्कंद में वर्णन मिल जाता है मन्वंतर, मनुओं का वर्णन आ जाता है। उसी प्रकार से ये जो 7वां स्कंद है जिसमें संपूर्ण रूप से नरसिंहदेव की लीलाएं, नरसिंहदेव की कथाएं बताई गई, ये उतय उस विषय का चर्चा करता है, वर्णन करता है। 10 विषय में से एक विषय आता है उति या उतय। ये उतय विषय का चर्चा किसमें होता है? 7वें स्कंद में होता है। ये शब्द एक प्रकार का अटपटांग सा लग रहा है ना, ज्यादातर नहीं सुना हुआ है, इस शब्द से पता लग रहा है हमको। तो ये उतय शब्द का अर्थ हमें जानना चाहिए। हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता रहेगा तो आगे की चीजें बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। इसलिए हमें सब भूमिका की आवश्यकता है ना। सारे किताब देखिए, कोई भी ग्रंथ देखिए, कोई मूवी देखिए, भूमिका होता है उसमें, है ना। कोई नैरेटर वो बतलाते हैं पहले या लिखते हैं भूमिका, तो पहले भूमिका हमको जानना थोड़ा आवश्यक है। इसलिए मैं इसका प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तुओं में से जो उतय विषय है उसका वर्णन 7वें स्कंद में हुआ है। तो ये उतय का अर्थ क्या है, या ये उति जो ये शब्द है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुछ प्राप्त करने की इच्छा, कर्म वासना, काम करने की इच्छा। काम करते हैं हम, उसको कर्म कहते हैं। ये जो कर्म करने की इच्छा है उसको उतय या उति कहते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कर्म के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। जो कर्म करने की इच्छा है उसको उतय कहा जाता है। ये पूरी 7वें स्कंद में वर्णन हुआ है, पूरा 7वें स्कंद में। तो भक्तों का कहना है और शास्त्रों में बताया गया, ये जो उति या ये कर्म करने की जो इच्छा है या कर्म करने की जो वासना है, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। क्या तीन प्रकार का होता है? क्या तीन प्रकार का होता है? आप लोग सुन रहे, बोलिए क्या तीन प्रकार का होता है? कर्म करने की इच्छा है ना, कर्म करने की जो वासना है, जो इच्छा है, ये तीन प्रकार का होता है। सद, असद और मिश्र। वो तीन क्या क्या है? सद कर्म वासना, असद कर्म वासना और मिश्र कर्म वासना। तीन प्रकार का होता है, सद कर्म वासना, असद कर्म वासना और मिश्र, यानी मिला हुआ ना, मिश्र कर्म वासना। ऐसे तीन प्रकार की कर्म वासना के बारे में बतलाया गया है। तो पूरे ये जो सातवां स्कंध है, ये सद असद और मिश्र कर्म के बारे में चर्चा करता है। पूरे स्कंध 15 अध्यायों विशिष्ट है, उसमें से पहले अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक असद कर्म वासना के बारे में बतलाया गया। पहले अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक, छठे अध्याय से लेकर दसवां अध्याय तक सद कर्म वासना के बारे में बतलाया गया है, और फिर 11 से लेकर 15 तक ये मिश्र वासना के बारे में बतलाया गया। तो पहले हम ये समझते हैं कि सद कर्म, असद कर्म और ये मिश्र कर्म क्या होता है। सद कर्म का व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि ये भगवत संबंधी होता है। जो कर्म भगवान से रिलेटेड है, भगवान से संबंधित है, वो सद कर्म है। ये सद कर्म हमेशा हितकारी होता है। बहुत सारे लक्षण है उसका, सद कर्म का। सबसे पहला लक्षण क्या है? ये भगवान से संबंधित होना चाहिए। ये कर्म, सद कर्म किससे संबंधित होना चाहिए? भगवान से संबंधित होना चाहिए। और दूसरा लक्षण क्या है इसका? ये हमेशा हितकारी होता है। किसका हित करता है? जो कर्म करता है उस व्यक्ति का, और साथ साथ में संसार का भी, सारे जीवों का ये हितकारी होता है। सभी जीवों के लिए हितकारी होता है ये सदकर्म। ये सदकर्म, ये सदकर्म करने की इच्छा कैसे कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं कि महत कृपा से। महत मतलब भगवान, या महत मतलब भगवान के भक्त। ये सद कर्म करने की इच्छा कैसे प्रकट होता है? महत कृपा से। ये सब लक्षण है सद कर्म का। पहला लक्षण क्या है? भगवान से संबंधित है। दूसरा लक्षण क्या है? कि ये सबका हितकारी होता है, पूरा मानव समाज का, पूरा जीवों का ये हितकारी होता है, साथ साथ में अपना भी। और ये प्राप्त कैसा होता है? इस प्रकार की सद कर्म करने की इच्छा मन में कैसे उत्पन्न होता है? महत कृपा से। महत कृपा, वो भगवान की कृपा भी, और भगवान के वरिष्ठ भक्तों की कृपा से। महत कृपा से ये सद कर्म करने की इच्छा हमारे अंदर उफान उठता है। ये उदाहरण सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का हरेक एक्टिविटी ये सद कर्म निपुण था, और उनको इस प्रकार के सद कर्म करने के पीछे स्रोत क्या था? किसकी कृपा हुई थी उनके ऊपर? नारद मुनि की। अभी समझ में आया सद कर्म क्या है, है ना? और ये सद कर्म के बारे में छठे अध्याय से लेके दसवां अध्याय तक वर्णन किया गया। भगवान से संबंधित, सबकी हितेशी, ये हित कर्म है, महत कृपा से प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है, और छठे अध्याय से लेके दसवां अध्याय तक इसका वर्णन है। ये सद कर्म वासना या सद कर्म का उदाहरण। अभी दूसरा क्या है? असद कर्म। ना असद कर्म क्या? जो भगवान से संबंधित नहीं है, या जो भगवत विरोधी है, भगवान के एकदम विरुद्ध है जो कर्म, भगवान के विरुद्ध, भगवान के आदेशों के विरुद्ध, भगवान के भक्तों के विरुद्ध, ये होता है असद कर्म। और ये असद कर्म हमेशा हानिकारक होता है। किसका हानि करता है ये? किसका नुकसान करता है? जो कर्म करता है उसका खुद का तो नुकसान करता ही है, साथ साथ में पूरे संसार का नुकसान करता है, सभी जीवों को नुकसान पहुंचाता है ये असद कर्म। ये असद कर्म वासना ऐसा है। फिर ये असद कर्म करने की इच्छा कैसे मन में आ जाता है? कैसे प्रकट होता है ये इच्छा? ना बतलाया गया महत क्रोध से। सदकर्म कैसे होता था? महत कृपा से। और असद कर्म कैसे होता है? महत क्रोध से। अगर किसी के ऊपर भगवान का क्रोध या भगवान के भक्तों का क्रोध है या उनका आशीर्वाद नहीं है तो वो व्यक्ति के अंदर असद कर्म करने की जो वासना है वो उठ जाता है, ऊपर उठता है, फिर वो असद कर्म करता है। खुद का तो खुद तो नरक में जाता है और बाकी लोगों को भी वो परेशान करता है। इसका उदाहरण क्या है सातवें स्कंध में? हिरण्यकश्यप। किसकी क्रोध के वजह से उसके अंदर इस प्रकार के भावना उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी के चार बच्चे है ना, चार कुमारों की क्रोध से इस प्रकार का असद कर्म करने की वासना उत्पन्न हुआ उनके अंदर। और मिश्र वासना, मिश्र कर्म क्या है? 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक ये मिश्र वासना का वर्णन है। इसमें युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को पूछते हैं अलग अलग वर्णाश्रम का धर्म, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, स्त्री धर्म क्या है, ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का धर्म, सन्यासी का धर्म, इन सारे धर्मों के बारे में वो बतलाते हैं। ये जितना वर्णाश्रम धर्म है ये सारा धर्म क्या है? ये मिश्र है, ये सद भी और असद भी, ये दोनों उसमें मेलाप है। ये वर्णाश्रम धर्म उसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये होल सेवन कैंटो जो है, ये सातवां स्कंध, ये उतः उति से भरा हुआ है। उति का वर्णन है, उति अर्थात कर्म वासना, काम करने की, कर्म करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा। ये कर्म वासना तीन प्रकार का होता है, सद असद और मिश्र। सद भावना कृष्ण के संबंधित या भगवत संबंध होता है और ये सबका हितकारी होता है, महत कृपा से ये प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण है, छठे अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक इसका वर्णन है। असद कृपा ये सबका हानिकारक होता है, महत क्रोध से ये उत्पन्न होता है, हिरण्यकश्यप उसका उदाहरण है। प्रथम अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक इसका वर्णन है। मिश्र कर्म जो है 11वें अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक वर्णन हुआ है। इस प्रकार से पूरा भागवतों का सातवां स्कंध का वर्णन, उत्तय का वर्णन या उति का वर्णन हुआ है। तो अभी आज हम लोगों ने ये जो सद कर्म है, उस सद कर्म के जो सबसे पहला अध्याय है, जो छठा अध्याय, उस छठा अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो सद कर्म किस प्रकार का है, फिर वो कैसे सभी लोगों का कल्याणकारी होता है, हम छठे अध्याय की शुरुआत से हम उसको पता लगा सकते हैं। और खास करके बैकग्राउंड स्टोरी जो है प्रहलाद महाराज का इस प्रकार है, आप सब जानते हैं। बहुत ही साधु संत पुरुष थे हिरण्यकश्यप, और बदमाश पुत्र था उनका प्रहलाद महाराज। मैं नहीं कहता हूं, संडर अमरक कहते हैं। वे दोनों क्या कहते हैं? चंदन जैसे वन में कांटे जैसा वृक्ष उत्पन्न हो चुका है। अर्थात हिरण्यकश्यप का खानदान चंदन का है और हमारे प्रहलाद महाराज उसमें कांटे का वृक्ष है, संडर अमरक भागवत में कहते हैं ऐसे। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र हुए प्रहलाद महाराज, जो अपने माँ के गर्भ में थे उसी समय नारद मुनि की कृपा से वो भगवत भक्त बन गए थे। हिरण्यकश्यप तपस्या के कारण अमाप शक्ति को प्राप्त कर लिए, पूरी संसार को त्रास देने लगे, कष्ट देने लगे, सताने लगे। उनकी डर से नदियां रत्न पैदा करते थे, 365 दिन हरा भरा वृक्ष हुआ करते थे फूल और फलों से। अपने हिसाब से ही मौसम बदलता था हिरण्यकश्यप के हिसाब से। सभी देवताओं को अपने अपने जगह से, अधिकार से वो निकाल दिए थे, खास करके अग्नि, वायु और वरुण देव, इन तीनों को खास करके बुलाया स्पेशली, तुम तीनों इधर आओ, रेजिग्नेशन लेटर लिखो और इधर रखो मेरे टेबल पे, छुट्टी तुम्हारा आज से, कुछ नहीं कर सकते लोग। हम लोग सोचते हैं कि भारत में बेरोजगारी है, नहीं, ये स्वर्ग में भी बेरोजगारी होता है है कि नहीं सदय संघ, स्वर्ग में भी बेरोजगारी होता है, उन लोग को भी कभी कभी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, भटकते रहते वो लोग, तो सबको भगा दिए। ऐसा शक्ति था कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे देवताएं सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के फूल का तोहफा लेके जाके बोलते थे गुड मॉर्निंग हिरण्यकश्यपु जी, दिस इज फॉर यू। वो क्या बोलता था, रख भाग यहां से। ये था हिरण्यकश्यपु। तो आप विचार करिए कितना शक्तिशाली होगा वो। और जो देवी देवताओं का उपासक है उनको थोड़ा सोचना चाहिए, मैं जिस देवता का या जिस देवी का पूजा कर रहा हूं, जब हिरण्यकश्यपु राज कर रहा था वो क्या कर रहा था, कौन सा फूल लेके जाता था। और जितने स्वर्ग के म्यूजिशियंस गंधर्व लोग हैं, हेवनली म्यूजिशियंस, उन लोगों का काम क्या होता है, हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाना और बजाना है ना। मगर जब हिरण्यकश्यपु राज किया उस समय सभी लोग हिरण्यकश्यपु का भजन गाया करते थे है ना, जैसे हम लोग नमस्ते नरसिम्हाय गाते हैं, वो लोग भी गाते रहेंगे नमस्ते हिरण्यकश्यपु, ऐसा कुछ, आप कितने सुंदर हैं, कितना बलशाली हैं। वैसे बुराई नहीं है क्योंकि भगवत भक्त थे वैसे उन सबको मालूम है। ऐसे बताया कि यहां तक कि नारद मुनि जैसे ग्रेट वैष्णव भी उनका गुणगान करते थे जाकर। वैसे नारद मुनि को सब कुछ मालूम है कि ये जय है ना भगवान विष्णु के पार्षद, इसलिए उनका गुणगान करते थे एक बार। तो इतना अमाप शक्ति था, उस शक्ति के कारण पूरी देवताओं को कष्ट देने लगे उन्होंने। और जब भी देवता कष्ट भोगते तो कहां भागते हैं, शिव ब्रह्मा के पास। उन दो, वो दोनों भी हाथ उठा देंगे हरि बोल, फिर सबको लेकर जाएंगे क्षीर सागर के किनारे, कहां पे, भगवान विष्णु के शरण। ही इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर है ना, वे रक्षक है अपना। किसी कैसा भी परिस्थिति हो, कैसे भी शंका हो, कैसे भी विपत्ति हो, हमें जाना चाहिए किसी के शरण में, तो वो कौन है, भगवान विष्णु या कृष्ण, उनके शरण में जाना चाहिए, देवी देवताओं के शरण में नहीं। क्योंकि उन लोगों को परेशानी होता था वो भी भागते थे उनके पास है ना। तो ये शिक्षा हमको सीखनी चाहिए उनसे। तो वहां पे जाए, वहां पे गए तो फिर भगवान बोले कि देखो मुझे सब कुछ मालूम है हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा है। कैसे मालूम है, सर्वत्र वसती, परमात्मा के रूप में सब सबके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए मुझे मालूम है हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा है। आप लोग चिंता मत करो, और क्या करो, चिंता करो मत, हरि नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोग मेरा नाम कीर्तन करो, मेरा भक्ति में लगे रहो, बाकी सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो, मेरे नाम और कीर्तन में लगो, बाकी तुम्हारा जितना भी समस्या है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ देखभाल कर दूंगा। कितना निर्भय प्रदान करते हैं। सबसे पहला उनका सेंटेंस ये था भगवान का कि डरो मत। जैसे ही जिस समय हम इतना आके कहते हैं हे राधा गिरधारी, हे भगवान, हे जगन्नाथ, मैं आज से आपका हूं, मैं आपके शरण में हूं, बाकी सब चिंता उनका है। और अगर कोई आके बोलता है कि हे भगवान प्लीज गिव मी माय डेली ब्रेड, आप कृपया मेरे को आज का खाना दे दो, तो कितना बेशरम की बात है। कोई अपने पिताजी को जाके बोलेगा कि पिताजी पिताजी आज मुझे खाना दोगे, तो पिताजी को क्या लगेगा, अरे बेवकूफ इतना मेहनत किसके लिए कर रहा हूं मैं। तो भगवान ने पूरा संसार हमारे लिए सुविधा के लिए बनाए हैं, हम मूर्ख हैं, हम हमारे उस सुविधाओं को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर देवता उनके शरण में गए, कृष्ण बोले, भगवान बोले, दिखाई नहीं पड़े, खाली बोल दिए तुम लोग मेरा भजन कीर्तन करो। फिर उनको मैं मारूंगा, कैसे मारूंगा पता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेगा, गायों के प्रति अपराध करेगा, मेरे भक्तों के प्रति अपराध करेगा, और मैंने अनुगत्य जो है मेरे अधिकृत जो है देवताओं के प्रति अपराध करेगा, इसीलिए मैं उसको मार दूंगा। इसलिए हमें देवताओं के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, देवताओं को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हम हरे कृष्ण इस्कॉन में आते हैं तो बार बार सुनते हैं कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, देवताओं का भक्ति नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है देवी देवताओं का असम्मान करें, उनके मंदिर में जाके भी उनको प्रणाम ना करें, मंदिर से गुजर रहे उनको ऐसे केयरलेस दृष्टि से देखते हैं, जैसे रास्ते में भिखारी को देखते हैं वैसे कोई शिव जी का टेम्पल आ गया तो हम उसको देखे बिना ही चले गए, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और भी महत चरणों में देवताओं के चरणों में, देवताओं के चरणों में भी अगर अपराध होता है तो श्री भगवान हमारे पर प्रसन्न नहीं होते हैं, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। नहीं, पूजा केवल कृष्ण की करनी चाहिए, मगर उनको सम्मान देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त हो, भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो देवी देवताओं के ऊपर अपराध करेगा उनके प्रति, मगर खास करके एक काम उसने करेगा, अपना ही बेटे के प्रति अपराध करेगा। और उसका बेटा प्रहलाद, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, और उसको मारने के लिए उसको सताएगा, और जैसे ही मेरे महान भक्त को सताएगा तो फिर मैं उसको ब्रह्मा जी का जो लाइफ इंश्योरेंस का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है उसको सामने दिखा दिखा के मारूंगा। नरसिंह देव कहते हैं, देखिए भागवत, नरसिंह देव ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वर रहते हुए भी मैं उसको मार दूंगा। इसका क्या मतलब है? जितना बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है ना, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, पशु नहीं, मनुष्य नहीं, तो सब सामने रखूंगा, दिखा दिखा के मारूंगा, देख क्या क्या तूने बोला था, और मार दूंगा। कब मारूंगा? जब उसने मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा। तो ये बहुत बड़ा अहमियत रखता है। श्री प्रभुपाद बहुत तात्पर्य लिखते हैं, एक बार अगर कोई व्यक्ति महत चरणों में अपराध करता है तो उसका आयु घटते जाता है, तुरंत आयु घट। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति, गाय के प्रति और भगवत भक्तों के प्रति हमें किसी भी प्रकार से सताना नहीं चाहिए उनको, ना ही शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से, किसी भी रूप से नहीं सताना चाहिए। अगर कोई मानसिक रूप से भी हमसे परेशान है तो भी अपराध लगता है, इसलिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक रहना चाहिए, जो कि ये बहुत कठिन भी है, इसका प्रयास करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र होते हैं, बाद में हिरण्यकश्यपु उन्हें गुरुकुल में भेजते हैं, फिर लाके पूछते हैं, बेटा क्या सीखा, गुरुजनों से बताओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी, पिताजी ने कहते हैं, असुर श्रेष्ठ, असुरों में शिरोमणि, तुम घर द्वार छोड़ो, वृंदावन में जाके भजन करो, नहीं तो इस्कॉन के कोई आश्रम में जाओ। तो उनको हंसी आता है हिरण्यकश्यपु को, अरे बच्चा है ना, कोई बिगाड़ दिया उसका बुद्धि को। संड और अमर को कहते हैं, ध्यान रखो, बच्चा बिगड़ रहा है मेरा, भेज दिया। कुछ दिनों बाद फिर से बुलाया अपने पुत्र को, फिर से बुला के क्या पूछे, सेम क्वेश्चन, बताओ तुम्हारे गुरुजनों ने तुमको जो शिक्षा दिया उसमें से सबसे अच्छा तुमको क्या लगा। प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे 9 प्रकार के भगवान के विष्णु के चरणों का भक्ति बतलाते हैं प्रहलाद महाराज। उस समय बहुत क्रोधित होते हैं, आप सबको मालूम है, फिर उनको मारने के लिए प्रयास करते हैं, सभी प्रयास विफल हो जाता है। हाँ, विफल हो जाने के बाद संड और अमर का क्या बोलते हैं, देखो महाराज आप इतना चिंता मत करो, बच्चे को हमारे पास छोड़ दो, हम उनको देखभाल करेंगे, बच्चा है सुधर जाएगा, है ना। कभी कभी माँ बाप ऐसे सोचते हैं, बच्चा है ना बाद में सुधर जाएगा प्रभु जी, अभी से क्या उसको हरे कृष्णा सिखाने का, वो बाद में अपने आप से करेगा, हम थोड़े बचपन से आए थे, हम तो अभी अभी भक्ति में आए। ये बहुत गलत धारणा है। हम आगे देखेंगे कैसे साफ साफ लिखा गया कि बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग देना चाहिए, नहीं तो आगे हमारे वश में नहीं रहेगा। तो ऐसे सोचकर उन्हें ले लिए और पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाए? राजनीति। मगर राजनीति में इच्छा नहीं था। क्यों इच्छा नहीं था प्रहलाद महाराज का राजनीति में? क्योंकि राजनीति शिक्षा क्या देता है, ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है। तो प्रहलाद महाराज का ना कोई शत्रु थे ना कोई मित्र। सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखते थे, इसीलिए उनको राजनीति में इच्छा नहीं था। अर्थनीति, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी रुचि नहीं था प्रहलाद महाराज का। क्यों रुचि नहीं था? क्योंकि इकोनॉमिक्स सिखाता है कि कैसे पैसों को इकट्ठा करना है, क्योंकि आगे हमें बहुत काम में आने वाला है। मगर जो भगवत भक्त होते हैं उनका जेब हमेशा कुर्ता पहनते हैं वो लोग, और कुर्ता का जेब खाली रहता है, और भिक्षा मांगने जाते हैं, हम लोग डोनेशन मांगने जाते हैं, वो डोनेशन हम ऐसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करते हैं, एक्चुअली वो भिक्षा है, भिक्षा मांगने जाते हैं, नियम है ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना चाहिए। तो ब्रह्मचारी धनी नहीं होता है, वो भिखारी होता है एक्चुअली, ब्रह्मचारी भिखारी होता है। कभी कभी हम देखते हैं उनके पास गाड़ी है यूज करते हैं, मोबाइल सेलफोन यूज करते हैं, बहुत सारे उपलब्धियां हैं, ये सब कृष्ण की सेवा के लिए, मगर वो कंगाल है। एक बार वो सब कृष्ण का सेवा छोड़ेगा उसके पास कुछ नहीं रहेगा, भिखारी बन जाएगा सब वो ऐसा। तो क्या कह रहे थे, हाँ, प्रहलाद महाराज को संडर अमर को बोले हम संभाल लेंगे, और गुरुकुल में ले गए, गुरुकुल में इकोनॉमिक्स पढ़ाए। मगर प्रहलाद महाराज को इकोनॉमिक्स पसंद इसीलिए नहीं था क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ये सेंटेंस एक भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, मेरा रक्षा कृष्ण निश्चित रूप से करेंगे, तो मुझे कुछ चीजों का इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को ये सब नहीं चाहिए था। कभी कभी उनके गुरुजन क्या करते थे, वो अन्य कामों में व्यस्त रहते थे। उस समय प्रहलाद महाराज जो कि 5 साल के बच्चे थे, अपने जो खेलने वाले बच्चे हैं उन लोगों को इकट्ठा बुलाते थे, बुलाकर क्या करते थे और खुद सिखाते थे उनको ये भक्ति के बारे में। वो क्या सिखाते थे वो 6वें अध्याय में वर्णन है, उसको हम लोगों ने देखेंगे। श्री प्रहलाद उवाच, आप लोग बोल सकते हैं, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने बोले कि बच्चों को बोले रहेंगे, चलो बच्चों मैं कुछ बताता हूं सुनो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। तो बच्चे क्या बोले रहेंगे, अभी तो खेलने का समय है ना, अभी तो हम बच्चे हैं, हमको खेलना चाहिए, ये सब बातें थोड़ी सीखना चाहिए। ऑलरेडी टीचर्स क्लास में कितना परेशान कर रहा है पक पक करके, अभी थोड़ा फ्री मिला है तो खेल लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का अभ्यास करना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, खास करके बाहर के लोगों के लिए बाद में, पहले हम जितने तिलकधारी दीक्षाधारी तब भक्त है हम लोग के लिए आवश्यक है। ये बार बार सुनते हैं इन चीजों को हम सब, और शास्त्रों का कथनों को सुनते हैं मगर हम उसको आचरण नहीं कर पाते, इसलिए हमें और बार बार सुनना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए अपने जीवन में। कौमारे, कौमार मतलब कुमार अवस्था, अनेकों अवस्था से हम लोग गुजरते हैं, जैसे सबसे पहला बाल्य अवस्था है ना, जन्म से लेके 5 साल तक, 5 साल से लेके कुमार अवस्था शुरू होता है कौमार, फिर यौवन, फिर जरा मतलब बुढ़ापा है ना, ऐसे हमारा शरीर अलग अलग अवस्थाओं से गति करता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार अवस्था से ही, 5 साल के आयु से ही उसको अभ्यास करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। आचरण का अर्थ क्या है, अभ्यास। क्या अभ्यास करना चाहिए, धर्मम, धर्म का अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए 5 साल की उम्र से, धर्म का अभ्यास करना चाहिए। कौन सी धर्म की अभ्यास करनी चाहिए, ये एक प्रश्न है। फिर कोई बोल सकता है कि 5 साल की उम्र में धर्म कैसे अभ्यास कर सकता है, क्योंकि इतना बचपन में उसका वर्णाश्रम का धर्म भी लागू नहीं होता उस बच्चे के लिए 5 साल की उम्र में, फिर कौन सा धर्म का पालन करेगा। धर्म किसे कहते हैं, आप में से कोई कह सकते हैं धर्म किसे कहते हैं, भगवान की सेवा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसे अलग अलग जो डेफिनेशन से संज्ञाएं हम धर्म के ऊपर दे सकते हैं। पुत्र कह सकता है उसके लिए धर्म क्या है, माता पिता का सेवा करना, ये धर्म है कि नहीं। पति अपना घर का देखभाल रख, पत्नी का देखभाल करना और बच्चों का देखभाल करना धर्म है कि नहीं। एक नागरिक को अपने देश का सेवा करना धर्म है या नहीं। एक जीवात्मा को कृष्ण की सेवा करना धर्म है कि नहीं। तो फिर यहां पे कौन सी धर्म की बात बतलाई गई, नित्य धर्म। धर्म को हम दो भाग कर सकते हैं, दो प्रकार से समझ सकते हैं, नित्य धर्म और एक है नैमित्तिक धर्म। क्या क्या धर्म है, ये नित्य धर्म एक है और एक है नैमित्तिक धर्म, दो प्रकार के धर्म है, याद रखना चाहिए हमें। इस प्रकार से याद रखेंगे तो हम समझ पाएंगे मैं जो कार्य कर रहा हूं कौन सा धर्म है, किसके कैटेगरी में आता है, वो करना चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसे समझना चाहिए हमें। नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म क्या है, नित्य धर्म क्या है। नित्य धर्म वो है जो आत्मा से संबंधित है, जो हमारे साथ हमसे संबंधित है, हमसे मतलब आत्मा से संबंधित है। और नैमित्तिक धर्म वो है जो हमारे शरीर से संबंधित है, तो नित्य धर्म क्या हो सकता है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण का सेवा करना, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, कृष्ण का सेवा करना ही जीवात्मा का नित्य धर्म है। और नैतिक धर्म, नैमित्तिक धर्म क्या है? नित्य नैमित्तिक को ऐसे समझते हैं, जो कभी नहीं बदलता है वो नित्य धर्म है, जो बदलता रहता है वो नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म का बारे में चर्चा करिए, कोई बच्चा है, बेटा है, पुत्र है, पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता का सेवा करना, ये पुत्र का धर्म है, पुत्र धर्म बोला जाता है। जैसे ही वो बच्चा आगे जाके शादी कर लेता है, कौन सा धर्म बन जाता है उसके लिए? फिर पति धर्म। जैसे उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसका कौन सा धर्म होता है? पिता धर्म हो जाता है। शादी करने के बाद फिर दामाद का धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं ना। फिर कुछ धर्म नीचे से छूटते भी जाते हैं, है ना। जब तक वो विवाह नहीं किया है, गुरुकुल में है, आश्रम में है, उसका धर्म क्या है? ब्रह्मचारी का धर्म। जैसे वो विवाह करता है, फिर उसका धर्म क्या होता है? एकदम बदल जाता है, वो गृहस्थ का धर्म बन जाता है। जैसे 50 साल के बाद वो स्त्री को छोड़कर वन में जाता है, मंदिर में आ जाता है वापस, उसका धर्म फिर वानप्रस्थ का धर्म हो जाता है। ये बदलता रहता है धर्म। ये ब्रह्मचारी धर्म भी नित्य धर्म नहीं है, गृहस्थ धर्म भी नित्य धर्म नहीं है। ये सब जो वर्णाश्रम का धर्म है, ये केवल नैमित्तिक धर्म है, ये बदलने वाले धर्म है, इसलिए नैमित्तिक धर्म। और ये वर्णाश्रम किसके साथ संबंधित है? हमारे शरीर से संबंधित है, अतः यह नैमित्तिक धर्म है। और नित्य धर्म क्या है? जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता है। श्रीमद् भगवद गीता के भूमिका में आप लोग देखेंगे, श्रील प्रभुपाद वहां पे इसके बारे में लंबा लिखे हैं, एक पैराग्राफ पूरा लिखे हैं। रामानुजाचार्य का कोट करके लिखते हैं, धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से लिखते हैं, धर्म वो है, वो कभी बदलता नहीं है। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है, पदार्थ के साथ उसका धर्म हमेशा रहेगा, जो कभी कितना प्रयास करने से भी निकलेगा नहीं, वो नित्य धर्म है, शाश्वत धर्म है, वही सनातन धर्म है। उदाहरण के लिए आग से उसकी उष्णता, मिर्ची से मिर्ची का उसका तीखापन कभी अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे जीवात्मा का धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना, ये नित्य धर्म है। तो यहां पे जो धर्म करने के लिए बतलाया गया वो कौन सा धर्म है? भागवत धर्म, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति, ये नित्य धर्म है। तो 5 साल की उम्र में कैसा कर सकता है नित्य धर्म? भगवान की भक्ति 5 साल की उम्र में कैसा कर सकता है? ये भी प्रश्न उठ सकता है। ये तो नहीं हो सकता प्रभु जी, नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? आचरते, आचरित, आचरण करना। आचरण का अर्थ प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि अभ्यास, उसको अभ्यास करना पड़ेगा, माता पिता को उसको अभ्यास कराना पड़ेगा बच्चे को, कि बचपन से ही 5 साल की उम्र से उसको भक्ति सिखाना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों? और आगे, और जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। क्यों प्रभु, क्यों इस प्रकार से कहे हैं प्रहलाद महाराज कि 5 साल की उम्र से ही हमें कृष्ण भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, भक्ति बच्चे के अंदर? क्योंकि मनुष्य जन्म क्या है? यह अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, भाग्यवान व्यक्ति को ही ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। दुर्लभ का अर्थ समझते हैं, जो आसानी से मिलता नहीं है उसे दुर्लभ कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं, प्रभु जी अभी तो हमें मिल गया ना, अभी क्या दुर्लभ है? जो आसानी से मिलता नहीं है वो दुर्लभ है, अभी तो हमें मिल गया मनुष्य जन्म, फिर क्या दुर्लभ रह गया? जो प्राप्त हो जाता है फिर वो दुर्लभ नहीं रह जाता है। इसीलिए फिर आगे क्या कहते हैं, अध्रुवम, दुर्लभम मानुष्य जन्मन तदप्य अध्रुवम। फिर भी वो अध्रुवम, ध्रुवम मतलब शाश्वत, अध्रुवम मतलब शाश्वत नहीं है, टेम्पोररी है, क्षणिक है। बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है ना, अभी तो मिल गया ना, क्या दुर्लभ? दुर्लभ भी है और साथ साथ में अध्रुवम है, कभी भी खत्म हो सकता है। कोई ये कह सकता है मेरा बेटा 100 साल जिएगा या मैं कल जिंदा रहूंगा? नहीं, कभी भी कोई भी बॉम्बे की भाषा में टपक सकता है। बताओ है? इसलिए हमको एकदम तैयार रहना चाहिए। मगर साथ साथ में तीन विशेषता मनुष्य जीवन का तीन विशेषता बतलाया गया। एक है दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है। दूसरा है ये अद्रुबम, अद्रुबम का अर्थ है ये कभी भी नष्ट हो सकता है, टेम्पररी है, शाश्वत नहीं है। तीसरा क्या बताया? अर्थदम। अर्थदम का अर्थ है एकदम कीमती, बहुत मूल्यवान है ये। अर्थदम का अर्थ है ये टेम्पररी शब्द याद आने से कितना जल्दबाजी होना चाहिए भक्ति करने के लिए याद आता है। कभी कभी आप देखे रहेंगे म्युनिसिपैलिटी का पानी जब आता है नल में, जो घर में जिसका कनेक्शन नहीं है वो बाहर बहुत सारे लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, वहां पे खड़े रहते हैं। ये म्युनिसिपैलिटी कभी कभी 1 घंटे के लिए पानी छोड़ेगा, है ना? तो कितना तत्परता से हम लोग पानी भरते हैं, लोग भरते हैं ना, अभी बंद हो जाएगा, बस 5 मिनट बाकी है, भरो भरो जल्दी जल्दी, बंद हो जाएगा अभी, कितना तत्पर है। क्योंकि वो ध्रुवम नहीं है, हमेशा के लिए वो पानी नहीं आने वाला, बस 1 ही घंटा आएगा, उसमें जो भर लिया वो भर लिया। तो बस बहुत कठिनाई से मिल गया अपने को ये मनुष्य जन्म, और कभी छूट जाएगा वो पता ही नहीं, किसी भी समय छूट सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको ये भगवत धर्म कृष्ण की भक्ति कर लेनी चाहिए, अतः कौमार अवस्था से ही। चलो ये न के न प्रकार है ना, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम अभी तक जिंदा है, और जिंदा रहने के बावजूद हमको हरे कृष्ण मिल गया है। तो ये हमको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि बचपन से ही भक्ति सिखाए, यह नहीं सोचना चाहिए। एक बार हमने एक प्रभु जी से मिले, फिर ऐसे बातों बातों में पूछे, प्रभु जी आपका बेटा नहीं आया? हाँ प्रभु जी, आजकल थोड़ा वो उसको पढ़ाई छोड़ तो दिया, नहीं पढ़ाई कर रहा है, छुट्टियां चल रहा है तो खेलने जाता है प्रभु जी। अभी बच्चा है ना, अभी क्या भक्ति करेगा प्रभु जी, हम लोग थोड़ी बचपन में भक्ति किए, हम तो बूढ़े हो गए अभी भक्ति कर रहे हैं। उसको थोड़ा खेलने दो, मजा लेने दो, सुख भोग लेने दो। तो कैसे विचार, दीक्षित भक्त हैं फिर भी ऐसे विचार है, बच्चा है, गेम खेलने दो, सिनेमा देखने दो। कुछ ऐसे दीक्षित भक्त अपने बच्चों को पैसा भी देते थिएटर में जाके सिनेमा देखने के लिए। तो विचार करिए कितना एकदम भरा हुआ है हम लोगों के अंदर ये सारी चीजें। तो ये समझना चाहिए, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन अध्रुवम है, और मनुष्य जीवन अर्थदम। अर्थदम मतलब एकदम कीमती। इसी जीवन में या इसी शरीर में ही, मनुष्य जीवन में भी हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, और कोई जीवन में हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में एक जगह प्राप्त होता है कि ये मनुष्य जीवन कैसा है, ये एक बहुत अच्छे से बनाया हुआ नौका जैसा है, ये एक बहुत अच्छे से बनाया हुआ नौका जैसा है। और इसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, इस नौका को काम में लगाकर इस भव सागर से पार कर सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये नौका है और मुझे इस भव सागर, संसार रूपी सागर से निकलना है। तो संसार रूपी ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए मुझे मनुष्य जीवन के ही आवश्यकता है, जो कि मुझे अभी मिला है, और उसको मैं यूज में लाऊंगा। कैसे यूज में लाऊंगा? भगवत भक्ति करके, धर्म, भगवत धर्म, भागवत धर्म को अवलंबन करके मैं इस संसार से निकल जाऊंगा। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, तो भागवत धर्म क्या है, कैसी भागवत धर्म है ये, कैसे पालन करना चाहिए। प्रभुपाद में तात्पर्य लिखते हैं, प्रहलाद महाराज पहले से बोल चुके हैं, अर्चनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद, देखो कलयुग में भागवत धर्म बहुत आसान है। कैसे आसान है, कौन कह सकता है? जपो और खुश रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। ये ही भगवत धर्म है, बहुत बड़ी चीज नहीं है भागवत धर्म। क्या बच्चा ये नहीं कर सकता है? 5 साल का बच्चा कर सकता है, बचपन से ही सिखाना चाहिए, उसी समय से हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। और अगर उसी समय से हम ट्रेनिंग देंगे तो बहुत बड़े बड़े विपत्ति से भी हम बच्चे को बचा सकते हैं। क्या मालूम कल सुबह बच्चा जिएगा कि नहीं, आज जन्म हुआ कल भी मर सकता है। एक बच्चे की बात बतलाऊं, दक्षिण अफ्रीका की बात है, अभी का कुछ दिन पहले का होगा, दक्षिण कभी बतलाया भी रहेगा मैं, दक्षिण अफ्रीका की बात है। वहां के एक परिवार भक्त परिवार थे और उन्होंने और इस्कॉन से जुड़े हुए दीक्षित भक्त थे, उनका एक छोटा सा बच्ची थी, 5 साल 6 साल की उम्र की बच्ची, और उसको वो घर में खेल रही थी। एक दिन की बात है, पिताजी छत पे काम कर रहे थे, वो घर में खेल रही थी और उसका नरसिम प्रणाम याद था, है ना। ये नरसिम प्रणाम बच्चों को सबसे पहले याद हो जाता है अपने, हरे कृष्णा बच्चों को, है ना, जितने भी हरे कृष्णा बच्चे हैं नरसिम प्रणाम पहले याद करेंगे और जगन्नाथ जी से ज्यादा प्रेम करेंगे, आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे उनको और नरसिम प्रणाम को याद करेंगे ऐसा। तो नरसिम प्रणाम में याद था, तो बच्ची घर में गेंद के साथ खेलते खेलते नरसिम प्रणाम बोल रही थी। क्या सिखाया माता पिता ने उनको, नरसिम प्रणाम बोलना हर समय, घर में खेलते समय नरसिम प्रणाम बोल रहे थे। गेंद निकल गया बाहर, रोड के ऊपर चला गया गेंद, तो बिचारी बच्ची रोड के ऊपर गई गेंद लाने के लिए, उसका पिताजी ऊपर से देख रहा था और उस देखते देखते उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा ट्रक और अत्यंत वेग से वो आ रहा है और बस अभी बच्चे को मारने वाला। वो सीन देख के तुरंत पिताजी छत से कूदा और उसका पैर टूट गया, बेचारा वहीं पे गिर गया, आगे उठ नहीं पाया। और वो बच्चे हॉर्न देख सुनकर वो देखी ट्रक को और बहुत डर गई, और ट्रक आया बहुत तेजी से मारा बच्ची को, बच्ची 6 फीट हाइट से उछली और कुचल के गिर गई बाहर एक खेत खेत में जाके, बाजू में जाके। सोचिए 5 साल की नन्ही सी बच्ची है और बहुत बड़ा सा ट्रक उसको दबा दी, इतना जोर से मारा कि बच्ची उछली ऊपर, एकदम बॉल जैसे उड़ता है ऐसे उड़ के बाहर गिरी। ट्रक रोका, पुलिस को फोन किया, पुलिस का हिम्मत नहीं हुआ बच्ची को उठाने के लिए, ट्रक मारा, 5 साल की बच्ची है तो कैसे हुआ रहेगा उसका हालत। अस्पताल का एम्बुलेंस आया, डॉक्टर्स आए उसको उठाने के लिए, ये न कहने प्रकार है ना, उसको उठा के अस्पताल लिए, उसका एक्सरे निकाले, नर्स ने एक्सरे लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर चिल्ला के बोलता है, नॉनसेंस, अभी मजाक करने का टाइम नहीं है। नर्स बोलती, मैं कौन सा मजाक की, मैं तो एक्सरे लाके दिखा रही हूं। नहीं, ये उस बच्चे का एक्सरे नहीं है। नर्स बोली, मैं तो गलती नहीं किया, मुझे याद है। फिर उसको चेक करने के लिए वापस गई, फिर चेक की उसने कि यही सही एक्सरे है। डॉक्टर बोला, हो ही नहीं सकता ये सही एक्सरे। ट्रक कुचला, 5 साल की आयु की नन्ही और कोमल हड्डियां है और एक्सरे में दिखाई पड़ रहा है कि एक भी हड्डी में थोड़ा सा खरोच भी नहीं आया। कैसे नहीं आया, डॉक्टर आश्चर्य हुआ। तो डॉक्टर खुद गया, फिर एक्सरे हुआ, बहुत जांच किए, बच्ची बेहोश थी। और फिर वो पिताजी को पूछा गया, पिताजी छत से कूदा तो पैर, और उसको पूछा, बोला कि मैं देख रहा था उस ट्रक कुचलते समय। ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर बोला कि मैं प्रयास किया था ब्रेक देने के लिए, मगर मेरा गाड़ी इतना स्पीड था कि मैंने उसको लग गया मेरा गाड़ी, और मैं बाहर आगे जाके रोका गाड़ी को। पुलिस सेम थिंग बोल रही है, ड्राइवर भी सेम थिंग बोल रहा है, मगर देखा तो कुछ खरोच नहीं आया बच्ची को, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज है बच्ची। थोड़ी देर के बाद बच्ची को होश आया, होश आने के बाद बच्ची के साथ बात करने पर बच्ची क्या बोलती है, मेरे नरसिंह भगवान ने मुझे बचा लिए। और साउथ अफ्रीका वहां का डॉक्टर कहा नरसिंह देव के बारे में जानेंगे, लोग नरसिंह भगवान, हाँ नरसिंह भगवान, तो क्या नरसिंह भगवान क्या होता है ना, मेरे भगवान है, उनका जो सर है ना वो लायन जैसा है और उनका शरीर हमारे जैसा है, दो हाथ पैर है, वो मुझे उठा के लेके चले गए। डॉक्टर को डाउट हुआ, उसका पिताजी को बोला, ये ट्रक एक्सीडेंट है या एनिमल एक्सीडेंट है, तो बोलते नहीं ट्रक एक्सीडेंट है। तो बच्ची बोली कि विश्वास नहीं कर रहे थे कोई, बच्ची बोली कि मेरे भगवान मुझे बचा लिए, उठा के ले गए वहां से। मेरे भगवान बहुत अच्छे है, मगर एक ही प्रॉब्लम है, मेरे भगवान के पास नेल कटर नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाखून नहीं काटा था, देखो मेरे पीठ में उनका नाखून लग गया। तो जब भी ट्रक आया, भगवान नरसिंहदेव उठा के उसको लेके घास में सुला दिए थे, वो जो ऊपर से उड़ते हुए गई बच्चे, वो नरसिंहदेव उठा के लेके जा रहे थे। और वो डॉक्टर को दिखाई पीठ में, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, ट्रक मारा मगर पीठ में 2-3 निशान है नाखूनों का, थोड़ा सा खून का ऐसे निशान है। मतलब कैसे बची माँ, उसका पिताजी बचाया उसको, नहीं, हम नहीं बचा सकते। अल्टीमेट प्रोटेक्टर नरसिम्हदेव, भक्तों का रक्षक। तो हमें बचपन से ही भगवत भक्ति बच्चों को सिखाना चाहिए, सिनेमा देखने से रोकना चाहिए, गेम्स खेलने से उनको उनका जो बुद्धि को इधर घुमाना चाहिए भगवत भक्ति की ओर। नहीं तो आगे क्या होगा, फिर आगे बहुत सारा वर्णन आता है कैसी भागवत धर्म करनी चाहिए। फिर वो चौथे दूसरे श्लोक में कहते हैं यथा ही पुरुषस्य ह विष्णुपाद सपर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। कैसी भक्ति करनी चाहिए, भगवत भक्ति ना, भगवान विष्णु की चरण कमलों में सेवा ही भगवत भक्ति है, ये भगवत धर्म है। भगवत धर्म क्या है, विष्णु की चरण कमलों की सेवा ही भागवत धर्म है, ये सिखाना चाहिए बच्चे को। क्यों भगवान विष्णु की चरण कमलों की भक्ति, क्योंकि भगवान विष्णु जीवों की क्या क्या है, वो जीवात्मा के प्रिय है और आत्मेश्वर है, उनके आत्मा के ईश्वर है और साथ साथ में सुहृद है, वो उनका हितैषी है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतम माम शांति मुच्छति। किसी को अगर शांति चाहिए, कौन सी शांति, मन की शांति, दैसर वाली शांति नहीं। अगर किसी को शांति चाहिए तो तीन चीजें याद रखना चाहिए उसको, क्या क्या है तीन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर द कंट्रोलर कौन है, कृष्ण है। और तीसरा क्या है, सुहृदम सर्वभूतानम, भूतानम सारे जीवात्माओं के सुहृद, मित्र, हितैषी कौन है, कृष्ण है। जो व्यक्ति ये तीन चीजों को याद रखता है कि भगवान ही सर्व सारे यज्ञों का भोक्ता है, सभी का ईश्वर है और वो सभी का सुहृद है, मित्र है, ये तीन चीजों को याद रखता है, शांति मृच्छति, उन्हें शांति प्राप्त होता है। मगर हम शांति प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, भोग करने के लिए भटकते रहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, अतः मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। बच्चों को या हमें क्या सिखाना चाहिए मनुष्यों को, कि कैसे व्यक्ति भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु के प्रति जो उसका घनिष्ठ संबंध है उसको बढ़ा सके, जिसके कारण उसको प्रेम प्राप्त होगा कृष्ण की और उसको शांति या आनंद प्राप्त हो सकता है। मगर हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि कैसे भौतिक भोग करें, पैसा कमाएं और कमा कमा के कुत्ते बिल्लियां जैसा मर जाएं, ये चीजें हमको शिक्षा दी जाती है सुख प्राप्ति का। प्रहलाद महाराज उसके बारे में फिर से एक अच्छी बात कहते हैं, सुनिए, सुखम इंद्रिकम दैत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखामयं तंतः। हे असुर पुत्रों, किसको प्रवचन दे रहे थे प्रहलाद महाराज, तिलकधारी कंटीधारी भक्तों को नहीं, किसको प्रवचन दे रहे थे, असुरों के बच्चों को। इसलिए वो कहते हैं हे असुरों के बच्चों, और असुरों के बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। और आयु कितना है उनका, 5 साल। अब बताओ जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो ये नहीं देखते हैं असुर है या ससुर है, सबको प्रचार करते हैं। अगर असुर को प्रचार करते हैं तो ससुर को क्यों नहीं, पहले करना चाहिए उसको प्रचार। तो उनको क्या कहते हैं कि दैत्य देही योगी दैत्या, हे असुर के पुत्रों सुनो, ये जो सुख और दुख है ना, जैसे न चाहते हुए हमको दुख मिलता है, दुख हमें कैसे मिलता है, हम लोग कहते हैं क्या, मुझे कल बुखार आना चाहिए, तेज बुखार, डॉक्टर साहब मुझे कल तेज बुखार आना चाहिए, ऐसा कुछ दवाई दो, कभी नहीं कहते हैं। हम कभी भी दुख को आमंत्रण नहीं देते हैं, मगर बिन बुलाए मेहमान जैसा आके टपकता है, ये क्या है, दुख, कभी नहीं बुलाते हम। कोई चाहता है मैं दुखी हो जाऊं थोड़ा, अरे बहुत एंजॉय कर लिया अभी थोड़ा दुखी हो जाता हूं चलो, ऐसा कोई चाहता है नहीं, मगर दुख आता है। हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं एक गलत सर्टिफिकेट लाने के लिए, बीमारी आ गया करके उस बॉस को ठगने के लिए, बीमारी का मगर ये नहीं बोलते गलत बीमारी दे दे करके, नहीं ऐसा नहीं बोलते। तो दुख कोई नहीं चाहते फिर भी आता है, ठीक उसी प्रकार से ये सुख भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये सुख और दुख ये हमारे चाहने न चाहने के ऊपर नहीं है। हम चाहते हैं तभी सुखी हो जाते हैं या हम चाहते हैं तभी दुखी होते हैं, नहीं। ये हमारा सुख और दुख किसके ऊपर निर्धारित है? हमारा पूर्व जन्मों की कर्म के ऊपर निहित है। हम जिस प्रकार का कर्म किए हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हम लाख प्रयास क्यों ना कर लें। कई उदाहरण है, हम सबको पता है, हम कभी दुख नहीं चाहते फिर भी आता है। कुछ ऐसे दुख आते हैं उनका उस समस्या का समाधान सब जगह उपलब्धि है फिर भी उस समस्या समाधान नहीं होता है। कुछ ऐसे बीमारी आते हैं लोगों को, नॉर्मल सर दर्द होता है, पूरा टेस्ट करा लेता है कहीं पे उसका कुछ निकलता नहीं है प्रॉब्लम, फिर भी सर दर्द ठीक नहीं होता है। बताओ क्यों? क्योंकि जितना दिन तक उसको दुख भोगना है, कर्म में लिखा है उतना दिन तक वो दुख भोगेगा ही भोगेगा, भले वो लाख प्रयास कर ले उस दुख से बचने के लिए। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि देखो भक्तों, नहीं देखो दैत्य के पुत्रों, असुर के बच्चों, सुनो, तुम जो सुख भोगने के लिए भागते हो ट्रेन में लटक लटक कर, मतलब वो लोग नहीं लटक रहे थे ना, वो लोग नहीं लटक रहे थे, तुम लोग जो सुख भोगने के लिए बहुत प्रयास करते हो दैत्य हो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे दुख अपने आप से आता है सुख भी आएगा अपने आप, सुख भी अपने आप आएगा। सर्वत्र लभ्यते, और ये सुख सब जगह प्राप्त होता है। सर्वत्र मतलब किसी भी योनि में प्राप्त हो होता है ये सुख, जैसे दुख हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें केवल समभाव रखना चाहिए, सुख और दुख में प्रयास करना चाहिए कृष्ण की भक्ति के लिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, सुख दुख वो आता ही रहेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्व्यय परम। क्यों क्यों उसको पाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए उस सुख को? कोई पूछ सकता है, प्रभु जी ये सुख को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? भाई पैसा मिलेगा उसमें से बहुत सारा सुख मिलेगा, प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आयुर्व्यय, आयुर्व्यय परम, इससे हमारा आयु और ताकत शक्ति ये दोनों खत्म हो जाता है। सबसे पहला आयु खत्म होता है और काम कर करके शक्ति भी खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस प्रकार का सुख प्राप्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, शक्ति की हानि होती है। प्रोपर लिखते यदि यह मान ली भी जाए कि इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी इससे उनकी जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं होता है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कुछ सुख प्राप्त होता है इससे, ऐसा कोई अगर समझता भी है, फिर भी देखिए जो वास्तविक समस्या है वो समाधान नहीं होता है। हम पैसा कमा के हम मृत्यु से बच सकते हैं? हम पैसा कमा के बीमारी से बच सकते हैं? नहीं। हम पैसा कमा के बूढ़ा होकर बच सकते हैं? हाँ, गोदरेज हेयर ड्रायर लगा के बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। सुख प्राप्ति करने के लिए प्रयास करके जो रियल प्रॉब्लम से उससे नहीं बच सकते हैं, उससे नहीं बच सकते। क्या करने से बच सकते हैं? मुकुंद चरणाम भुजम क्षेमम बिंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम भुजम। अगर हम मुकुंद जो मुक्ति का दाता है, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनकी चरण कमलों का भक्ति करेंगे तो हम इस वास्तविक समस्याओं से बच सकते हैं, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छा लगता है ना सुनने के लिए, है ना, करने के लिए चलो कम से कम सुनने के लिए तो अच्छा लगता है। प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए कितना कठोर शब्द में, जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मर जाता है। अगर कोई भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो व्यक्ति कैसा है? कुत्ते बिल्लियों की तरह मृत्यु को प्राप्त करता है। क्यों ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद? वो हम सब जानते हैं ना, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और सेक्स लाइफ, मैथुन, ये चार चीजें मनुष्य में पशु में समान है। धर्मो ही एको अधिको विशेष, एक चीज एक्स्ट्रा अपने पास है, वो क्या है? धर्म करना, भगवत धर्म। कुत्ता भक्ति नहीं कर सकता है, कुत्ता है वो, कुत्ते नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है, वो अधिक विशेष है अपने पास। तो अगर हम वो भक्ति नहीं करेंगे तो हम वेल ड्रेस्ड टू लेगेड सिंपल एनिमल, दो पैर वाले, दो हाथ वाले, डाइनिंग टेबल में खाने वाले, डनलप बेड में सोने वाले जानवर है, ऐसा करके वो बताया गया शास्त्र, मैं नहीं बोलता हूं इसको। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों जैसा मर जाते हैं। और क्या करते हैं कुत्ते बिल्ली, यही करते हैं ना, आप लोग डिस्कवरी चैनल नेशनल ज्योग्राफी देखेंगे, वो क्या करते हैं उसमें, सब पशुओं का दिखाता है ना उसमें, वो कैसे खाता है, एक दूसरे से कैसे बचता है ना, कहां रहता है, और बच्चा कैसे पैदा करता है, प्रोक्रिएशन कैसे करता है, वो चार चीज दिखाया। कभी ऐसा दिखाया सब जंगल के बाघ भालू सब इकट्ठा हो गए, पूछने लगे किसी को, प्रवक्ता को बुलाए महाराज जी को, महाराज जी बताइए हम लोग नंगे क्यों घूम रहे हैं जंगल में, बारिश को क्यों सहते, कभी पूछे? आहार, निद्रा, भय, मैत्री, चार चीजों के ऊपर ही उनका काम है। इसलिए हम अगर वो कर नहीं वही करते रहेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमको वही बोला जाएगा। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, अतः संसार में रहते हुए भले या तथा बुरे की भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि शरीर हृष्ट पृष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो सके, तभी जीवन की चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, बूढ़ा होने से पहले ही हरे कृष्णा कर लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं प्रहलाद महाराज सीधा सीधा। शरीर जर्जर होने से पहले, मन चिंताग्रस्त होने से पहले हमको भगवत, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, और ये भगवत प्राप्ति कर लेना चाहिए। नहीं प्रभु जी, अभी तो थोड़ा पैसा कमाने का है ना, बूढ़ा तो मैं करेंगे ना रिटायर होने के बाद, साथ साथ में क्या रिटायर होता है, आंख, कान, पैर, सब कुछ रिटायर हो जाता है, चलने में नहीं होता है बराबर से, प्रभु जी क्या बोलता है भाषण सुनने में नहीं होता है, भगवान का दर्शन ठीक से नहीं होएगा, भगवान का प्रसाद मिलेगा तो रसगुल्ला को भी चबा नहीं सकता है, दांत नहीं रहेगा, तब क्या भक्ति करे। बुढ़ापा अत्यंत दर्दनाक होता है, हम ये सब सुन के बहुत हंसी आता है अपने को, मगर वो बूढ़ा व्यक्ति समझ सकता है उसको क्या तकलीफ होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए, जब तक ताकत है हाथों में तब तक मंदिर धोने में लगा देना चाहिए उसको, सेठ की जूता पॉलिश करने में नहीं, भगवान की मंदिर साफ करने में। सबे मना कृष्ण पदार बिंदयो, मन को कृष्ण की चरण कमलों का सिंदन में लगा देना चाहिए। बूढ़ा होएगा तो क्या चिंता लगेगा, मेरे जब इतना सब बनाया उसका देखभाल ठीक से नहीं कर रहा है मेरा बेटा, मेरा पोता का क्या होगा, मेरे पोता ये लोग सब अभी टीवी देखने सिनेमा देखने भाग जाते हैं, घर का देखभाल कौन करेगा, बेवकूफ अगले जन्म में कुत्ता बन के उधर ही बैठेगा फिर घर का देखभाल करने के लिए। अब बताओ, वृद्धावस्था में ये सब चिंताग्रस्त, अभी मान लीजिए उसका चिंता है ये जो घर में रहता है, और जिसको घर से भगा देते पूरा, गौर कृष्ण को बतला रहे थे, मैंने जीवन भर प्रयत्न करके सब कुछ बनाया, डनलॉप बेड सजाया, एसी का कमरा बनाया, आराम से सोऊंगा करके बेटा आया लात मार के बोलता है बूढ़ा हो गया वृंदावन में जाके भक्ति क्यों नहीं करता, इधर बकबक करता है। अरे भाई मैं सब कुछ बनाया और मेरे को ही बोलता है वृंदावन में जा, और ये सोएगा इसमें और बनाया मैं, तो उसका उसका मानसिक तनाव क्या होता रहेगा, सोचिए, विचार करिए। सुनने में मजा आता है, जो एक्सपीरियंस करता है। अब बताओ ये बुढ़ापा है, और अगर बचपन से अभ्यास नहीं किए रहते ना, बुढ़ापे में ये सब और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है वासना है। इसीलिए प्रहलाद महाराज सीधा कहते हैं, जब तक हमारे पास ताकत है, जवान है, शरीर हृष्ट पृष्ट है, मन एकदम से प्रफुल्लित है, उसी समय हमको कृष्ण भक्ति में, भगवत भक्ति में, जीवन की चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें लगा देना चाहिए। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं प्रहलाद महाराज, प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 साल होता है। फिर समझाते हैं, देखो अभी से लग जाओ, क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य जीवन कैसे खत्म होता है तुमको मालूम है? किसको बोल रहे हैं? असुर पुत्रों को। तो देखो असुर पुत्रों, कैसे मनुष्य जीवन हमारा छोटा है और खत्म हो जाता है। देखो हमारा 100 साल होता है, हर व्यक्ति कितना साल जीता है? हर योनि का आयु 100 साल होता है, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे मनुष्य, चाहे कीट या चाहे चींटी, हर एक जीव कितना साल जीता है? 100 साल। मगर समय के अनुसार, स्थान के अनुसार उनका 100 साल हमारे 100 साल में अंतर होता है। हमारा 6 महीना देवताओं का एक दिन होता है ना, और हमारा एक रात्रि एक कीड़ा के लिए 100 साल हो जाता है। कुछ कुछ कीड़े देखे रहेंगे आप बारिश में, वो शाम को जन्म होते हैं और सुबह उठते समय मर के गिरे हुए रहते हैं, उनका वो 100 साल है। बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों का शादी वादी कर लेते हैं और वो मर भी जाते हैं एक रात्रि में। तो इस प्रकार से 100 साल की जिंदगी में जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता है, वो व्यक्ति केवल 50 साल सो के खत्म कर देता है रात्रि, क्योंकि 12 घंटे का रात्रि होती है। और मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, हम लोग सो सो के 50 साल का गवा देते हैं हम सब। ये हमारा देखो, हमारा एकदम आईनी, हम प्रहलाद महाराज जैसे कि अपने को वो दिखा रहे हैं, क्या वो आईना, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो देखो 50 साल सो के खत्म कर दिए और कितना बचा? 50। फिर आगे क्या कहते हैं, 20 साल चला गया बचपन में खेल कूद में, बुद्धि आते आते 10 साल, जैसे थोड़ा बुद्धि आया नाचने कूदने हाथ पैर लगने चलने लगा तो खेल कूद में और 10 साल, 20 साल निकल गया बाल्यावस्था और कुमार अवस्था में, और 20 साल निकल गया किसमें? बीमारी में और बुढ़ापे में, हाथ पैर नहीं चल रहा है, कुछ चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, चिंताग्रस्त है, वृद्धावस्था चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त में और 20 साल निकल गया, कितना चला गया? 50, 70, 80। और जो थोड़ा बहुत बच गया ना, वो किसमें चला जाता है मालूम है? गृहस्थ जीवन में आसक्त होने के कारण वो चला जाता है। स्त्री, बच्चे, पैसा कमाना, थोड़ा सा सुख भोग लेना, इसके कारण ये 10 साल भी चला जाता है। लास्ट वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, दूरा पुरे न कामे न मोहे न च बलीयसा शेषम गृहेश सक्तस्य प्रमत्त शापयाति हि। दूरा पुरे न कामे न, जो अंतिम थोड़ा सा टाइम बचता है किसमें बिता देता है? काम में। कौन सा काम? काम मतलब दोनों समझ सकते हैं, काम इच्छाएं और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा, ये दोनों उसको काम कह सकते हैं। और वो कैसी कामना है? दूरा पूर्ण, कभी भी तृप्त ना होने वाली। ये काम इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा कभी तृप्त नहीं होगी। जितना आग में घी डालेंगे वो उतना जलता रहेगा, ये काम इच्छा इस प्रकार से। कुछ ऐसे संस्था है, कहते हैं भोग से संभोग से समाधि, या ऐसा कुछ कि भोग करते रहो करते रहो एक दिन विरक्ति आएगी, ऐसा नहीं होता है। विरक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, कृष्ण भक्ति करना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करना पड़ता है, फिर जाके विरक्ति उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होता है विरक्ति। तो बाकी जो जितना दिन अपना 10 साल कुछ बचा हुआ, बचा कुचा निकाल दिया किसमें? कभी तृप्त न होने वाली काम ने लगा दिया उसको, ऐसे करके 100 साल खत्म और अपना जिंदगी खत्म। इस तरह कुछ ही वर्ष बच गए, लेकिन वर्ष ये गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होने से इस चेतना को बिना व्यर्थ जाता है। अतएव मनुष्य को प्रारंभिक काल से ही पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, इसीलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसीलिए व्यक्ति को क्या चाहिए? बचपन से ही, जीवन की प्रारंभ से ही उसको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि वह गृहस्थ बनता है, अगर ब्रह्मचारी के बाद अगर वह गृहस्थ बनता है, तो तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलता। अगर वो ब्रह्मचारी जीवन जिएगा तभी वो ये सीख पाएगा कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, और वो गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं होगा और गृहस्थ जीवन उसको जकड़ेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी जीवन की आवश्यकता जरूरी है। हम लोग डरते हैं प्रभु जी के साथ मेरा बेटा रहेगा तो ब्रह्मचारी बन जाएगा, नहीं छोड़ते बच्चे को। प्रभु जी छुट्टी चल रहा है बच्चे को क्यों घर में खेलने भाग जाता है, भेज दो ना मेरे साथ। नहीं प्रभु जी बच्चा है थोड़ा खेलने दीजिए, बहुत पढ़ पढ़ के परेशान हो गया, डर है इसके साथ, इन लोगों के साथ रहेगा मंदिर ज्यादा जाएगा तो ब्रह्मचारी बन जाएगा, आगे जाके लात मार के घर से निकालेगा वो अच्छा है। कांदीवली में प्रोग्राम करता था मैं बच्चों का, लड़कों का, छुट्टियां होता था मैं कहता था इसको छोड़ दो मेरे पास एक महीने के लिए। उसका पिताजी बोला कि नहीं प्रभु जी अभी क्या है ये है वो है, बोला ठीक है। प्रोग्राम बंद करके डेढ़ साल के बाद उसका मम्मी का और पिताजी का दोनों का फोन आया और रोते रोते, मैं बोला क्या हुआ तुमको, प्रभु जी मेरे बच्चे को लेके जाइए ना आपके साथ रखिए। मैं बोला क्यों ना प्रभु जी, बहुत बिगड़ गया है, सुनता नहीं है, रात को 12 बजे वापस आता है। मैं बोला तुम तभी बुलाया था क्यों नहीं भेजा, प्रभु जी मैं मना नहीं किया था, ये है वो है बहुत सारा बहाना दिखाया। जब बिगड़ जाता है तभी प्रभु जी का याद आ जाता है, सुधरा हुआ रहता है तो ब्रह्मचारी बन जाएगा, नहीं छोड़ेंगे। हमको सीखना चाहिए, हम कई बड़े बड़े बातें बोलते हैं सिखाते हैं सब करते हैं मगर अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, सबका परिस्थिति ऐसा है। आगे बतलाएंगे क्यों नहीं छोड़ते हैं प्रहलाद महाराज, वो आप चिंता मत करो, वो भी बताते हैं प्रहलाद महाराज। देखो क्या बोलते हैं वो, ऐसा कर्म, मैं खाली पढ़ के सुना रहा हूं, बोलना दूर की बात है, उसका एक्सप्लेन करना लंबा आएगा, खाली पढ़ के सुनिए क्या लिखा है, समय भी हो गया। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहकर भी मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई नहीं संसार में, गृहस्थ रहकर भी मुक्त हो गया, गृहस्थी में आसक्त होके, पत्नी से आसक्त होके, बच्चों से आसक्त होकर और उसको भगवत प्राप्ति हो गया, ऐसा कोई संसार में नहीं है। इसलिए अगर हमको मुक्ति चाहिए, भगवत धाम चाहिए, भगवान के पास वापस जाना है, तो स्त्री बच्चे धन आसवा पत्रों से हमको आसक्ति छुड़ाना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आसक्ति छुड़ाना ही पड़ेगा। गृहस्थ जीवन वास्तव में भौतिक साथ आसक्त व्यक्ति के लिए विधि विधानों का अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार की अधिकृत छूट है, अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में उनके स्थान का गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी को गृहस्थ भी बनना है, बच्चे को शादी भी कराना है, तो उसको कुछ दिन के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में छोड़ना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कि कैसे गृहस्थ बनेगा तो कैसे भक्ति कर सकता हूं। जो भक्त गृहस्थ ब्रह्मचारी बन के और गृहस्थ बने तो आज सुंदर भक्ति कर रहे हैं, कई उदाहरण है। राधानाथ स्वामी महाराज कहा करते हैं कम से कम एक साल के लिए छोड़ो बच्चे को आश्रम में, ठीक है कम से कम 6 महीने के लिए छोड़ो, नहीं तो 1 महीने के लिए कम से कम छोड़ो, कम से कम 1 दिन के लिए छोड़ के देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के प्रशिक्षण। शास्त्र में क्या बताया गया, भौतिक संसार में रह के घर में रह के भी कैसे अनासक्त रहेंगे इस संसार से और भगवत भक्ति करेंगे, आश्रम में क्या सिखाएंगे, ये अंधा आसक्ति है बच्चों के प्रति अपना, ये पारिवारिक आसक्ति। अतएव बच्चे को बचपन से ही उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं बचपन से ही ब्रह्मचारी बनने के लिए शिक्षा देना चाहिए, तभी भविष्य में गृहस्थ जीवन का परित्याग कर पाएगा। अगर बचपन से ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग लिया रहेगा, बाद में अगर वो शादी करता है ना, 50 साल के बाद निश्चय वो घर छोड़ने के लिए विचार करेगा, घर छोड़ के संन्यास लेने के लिए वो निश्चय उसके बारे में चर्चा करेगा। नहीं तो व्यक्ति इस संसार को छोड़ना बहुत कठिन है, हम सबका अच्छा अभ्यास है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस है ना, नहीं नहीं है, है सबको। देखिए गृहस्थ घर को छोड़ना या गृहस्थ की आसक्तियों को छोड़ना कितना कठिन है और कैसे कठिन है। कहते हैं धन, खास करके सबसे पहले प्रहलाद महाराज धन से आरंभ करते हैं, धन को छोड़ना बहुत कठिन है। ये धन लोगों को इतना मीठा लगता है ना, मानो कि हनी, हनी समझते हैं, मद, मद कितना मीठा होता है, धन इतना मीठा लगता है लोगों को। कुछ कुछ लोग मैं ऐसे जानता हूं और कुछ लोग ऐसे देखा भी हूं पहले, वो तिजोरी खोलेंगे और उसमें से पैसों का बंडल निकालेंगे, आगे पीछे देख दरवाजा भर के आगे पीछे देख के बार बार गन के रख के बंद के ताला लगा के फिर आएंगे, फिर खोल के उसको गिन, वो गिनने में उनको बहुत अच्छा लगता है, खाली गिनने में नोट को। ऐसे भी लोग हैं, मतलब सोचो कितना मीठा लगता है धन उनको। बहुत कठिन है धन को छोड़ के आ जाना भगवान के शरण में। आगे कहते हैं यम क्रीणात्य सुवी प्रेष्टे तस्कर सेवको वणिक। ये धन को कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, अपना जीवन को खतरे में डाल के भी धन कमाते हैं, करते कि नहीं हम लोग सब ऐसे, है ना। कई उदाहरण है, सैनिक प्रोपद उदाहरण देते, सैनिक क्या करता है बॉर्डर पे, मुझे बताइए ऐसे कितने सैनिक है जो देश का रक्षा करेंगे करके वो आर्मी में भर्ती होते हैं। नौकरी पैसा मिलेगा मेरा घर परिवार चलेगा, मूल उद्देश्य है। पैसा नहीं दे नहीं मिलेगा पगार तो आर्मी में रहेगा, उसका जीवन का वहां पे कितना संकट है, कभी भी मर सकता है, फिर भी वो पैसा कमाने के लिए वहां पे है। और बतलाते तीन लोगों का बारे में बताया धन कमाने का। एक है सैनिक, अपने जीवन को संकट में डाल के भी वो नौकरी करता है। दूसरा है व्यापारी, अपने जीवन को संकट में डाल के भी देश से विदेश को यात्रा करता है व्यापार करने में। और तीसरा है चोर, है ना, अपने जीवन को खतरे में डाल के भी वो पैसा कमाने के लिए जाता है, उसका भी वो कमाना ही है पैसा, है ना। वो पहले की चोर अलग अलग होते थे, अभी तो सामने सामने घुसते हैं। पहले का घर जो है ना कंक्रीट का नहीं हुआ करता था, मिट्टी का होता था, तो वो चोर कैसा करता है मालूम है, सिंदूक खनन कहते हैं उसको, है? है? वो घर की बाहर, वो पहले घर में आके बाहर से ऐसे देख के जाएंगे वो लोग, फिर रात्रि के समय घर की बाहर से कुछ दूरी से वो लोग खुदाई करेंगे, खुदा खोल के वो घर के अंदर सुरंग बनाएंगे और बना के वो सुरंग के अंदर घुसेंगे बाहर से, और मुंडी की तरफ नहीं घुसेंगे क्योंकि पकड़ में आएगा तो मुंडी काट देगा वो लोग, इसलिए पैर की तरफ से घुसेंगे, तो पैर को घुसे घुस के अंदर जाएंगे और सामान लेके बाहर आए। कितना कितना कष्टदायक और कितना खतरनाक है चोरी करना, फिर भी उसको धन कमाने के लिए ऐसा ऐसा इस प्रकार के उपाय भी व्यक्ति करता है। तो सोचो धन कितना मीठा है ना, बहुत मीठा है ना। कौन तैयार है छोड़ने के लिए, कोई नहीं, कोई नहीं तैयार है। सभी लोग दुख व्यक्त करेंगे, जल्दी मंदिर बन जाना चाहिए, दान आना चाहिए, सब लोग क्या करते हैं मंदिर में रह के, ये लोग मंदिर जल्दी नहीं बनाते हैं, मगर हम अच्छे घर में रहेंगे, थोड़ा सा अपना घर का लाके धन देंगे, इधर शेयर करेंगे। बहुत कठिन से कमाया प्रभु जी, आप कमाओगे पता लगेगा, आप बैठ के खाते हो ना मंदिर में, मठ में खाते हो, खट में सोते हो, तुमको क्या मालूम पैसा कमाना कितना कठिन, कठिन है और इतना प्रिय है, जीवन से भी प्रिय है ये धन। कैसे प्रभु प्रहलाद महाराज कहते हैं, संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है वो भी गृहस्थ जीवन में रहकर, घर परिवार में रहकर भी वो छोड़ सकता है इस चीजों को, नहीं। उसके आगे और भी है, वो कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरं समंत्रान सुहुत्सुत स्नेह सीता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। और वो घर जिस घर में सुंदर पत्नी रहती है, और वो पत्नी भी कैसी है, दो विशेषता बताया गया पत्नी का, जो स्नेहली है और प्रिया है, वो हमेशा पति को सुख देने जैसे बातें करेगी, ये पत्नी का धर्म है। आगे पत्नी का धर्म में आएगा, पत्नी को पति को प्रसन्न करने के लिए सजना चाहिए, बहुत कुछ है आगे पढ़ना चाहिए। तो जो पत्नी अत्यंत स्नेहली है और अत्यंत प्रिय है और पति को बहुत सारा उत्तम कोटि का सलाह देती है, उसको अकेले में प्रसन्न करती है, तो ऐसे सुंदर पत्नी को कैसे व्यक्ति छोड़ पाएगा, कोई छोड़ पाएगा। अरे कोई रोज शाम को काम करके घर में आने से झाड़ू से पिटाई करती है और उसको गाली देती है, ऐसे पत्नी को छोड़ नहीं पाता है व्यक्ति, तो ऐसे प्रिय और स्नेह पत्नी को कौन छोड़ेगा बतलाइए। ऐसे बताते हैं प्रहलाद महाराज, नहीं छोड़ पाएगा, गाली सुन के भी ऐसे ऐसे करके उसका काम सेवा करेगा ही, ऐसे है ये गृहस्थ है। तो स्नेहली और एकदम प्रति की बातों को मानने वाली अगर मिल जाती है सेवा करने वाले, तो उसको कैसे छोड़ सकता है। ये गृहस्थ जीवन है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के पहले लाइन में कहते हैं, गृहस्थी में पहला आकर्षण है सुंदर तथा मोहिनी पत्नी, पत्नी गृहस्थ का आकर्षण। इस सुंदर पत्नी का बात सुनकर एक कथा याद आया, रियल घटना। वो एक भक्त थे, ब्रह्मचारी नहीं बने थे शायद वो, और बहुत अच्छे भक्त थे, मंदिर जाया करते थे शायद राधा गोपीनाथ में शायद। तो उधर एक स्त्री आया करती थी रोज, एक माता जी जवान, अत्यंत सुंदर थी, मान लीजिए वो अत्यंत एकदम सुंदर थी, जैसे कि मान लीजिए वो सिनेमा एक्टर्स होते हैं ऐसा। और वो ऐसे ही सज धज के आएगी, वो सोचती थी कि राधा रानी से ज्यादा लोग मुझे देखे शायद, इसलिए सज धज के आती है। तो वो सज धज के आती थी और सच में सुंदर थी और सभी लोग देखते थे उससे। तो एक भक्त ने उनको रोज देखते थे और देख के उन्होंने सोचा कि पत्नी होना चाहिए तो ऐसी, वाह ऐसी पत्नी होनी चाहिए, इतना सुंदर, और अगर ऐसी पत्नी के साथ जाऊंगा तो सभी लोग देखेंगे और बोलेंगे क्या गृहस्थी है, क्या सुंदर पत्नी है। और उसने प्रयास किया उसको शादी करने के लिए, ये न कहना प्रकार है ना, अंत में वो जो लड़की है वो राजी हो गई शादी करने के लिए। शादी हुआ, सब हुआ, पहले ही दिन क्या पता लगा, बहुत सुंदर तो थी, उसके नजदीक जब भी गया उसके मुंह से एक दुर्गंध आ रहा था, और इतना बुरी तरह से गंध आ रहा था कि असहनीय, सहन भी नहीं कर सकता व्यक्ति ऐसा। बोला कि ये क्या है, मैं तो कुछ और सोचा था, मूर्ख शरीर से क्या निकलेगा, बास थोड़े ना निकलेगा, सुगंध थोड़े निकला। तो बोला कि ये मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं ट्रीटमेंट करा रही हूं। तो उसने ट्रीटमेंट किया, बोला कि भारत में सब डॉक्टर के पास घूम चुकी हूं मैं, धनी धनी परिवार की थी। तो उसने विदेश में दिखाया उसको, बहुत प्रयास के बाद डॉक्टर लोगों ने यह बोला कि यह ऐसी बीमारी है कभी ठीक नहीं होने वाली है। अब सोचिए आप, नजदीक जाएगा तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे दुर्गंध निकल, और वो कभी ठीक नहीं होने वाला। अब विचार करिए क्या हाल हुआ रहेगा उसका। चलो जान दो, अभी तुमको तो मैं डिवोर्स नहीं दे सकता, इतना प्रयास से प्राप्त किया। अभी वो रास्ते में चल के जाते रहेंगे जोड़ी, सुंदर नव योड़ी, और सब लोग कहते रहे वाह उनका दोस्त कितना सुंदर पत्नी मिला तेरे को। वो तो बाहर को बहुत सुंदरता मुस्कान देता रहेगा और अंदर कितना सुंदर है मुझे ही मालूम, तो बाहर कुछ सुंदर कुछ ऐसा। तो ये जो शारीरिक सुंदरता के पीछे, तो ऐसे ऐसे पत्नी को कौन छोड़ सकता। आगे कहते हैं कि बच्चा घर में आते ही पिताजी पिताजी कह के हाथ बढ़ा लेता है ना, जेब में हाथ डाल लेता है ऐसे बच्चे को। वो एक बार गौरकृष्ण वो बतला रहे थे, राधा गोविंद महाराज के पास एक वृद्ध व्यक्ति आए थे, उनके शिष्य थे, वो बातें करते 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 महाराज उनको रुला दिए। कैसे, ओहो आप 7 दिन से कथा में रुक गए, आपका जो जो पोते हैं वो बहुत याद करते रहेंगे, हाँ महाराज जी, और आपका जो छोटा पोता है वो तो बहुत याद करता रहेगा, हाँ महाराज जी, और मैं जब भी जाता था वो मेरे जेब में हाथ डाल देता था दादा दादा बाबा बाबा कह के। महाराज और पूछे और कैसा करता था और क्या बोलता था, वो बुढ़ा व्यक्ति बोलते बोलते रोने लग गया, मेरे पोता ऐसा क्या करता रहे। महाराज बोले कभी पोता क्या करता रहेगा तुम्हारे विरह में, हाँ महाराज जी कहकर रोने लगा। तो कितना आसक्ति है सोचिए। तो ऐसे घर को परिवार को कैसे व्यक्ति छोड़। उतना ही नहीं, घर में कुत्ता पाला हुआ रहेगा, घर में जाते ही वो पैर में घसता रहेगा कुत्ता, नौकर रहेंगे अपना काम काज करने के लिए, घर सजाया हुआ था इतना धन संपत्ति से, इस प्रकार के परिवार को व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है, छोड़ के वन में और कृष्ण भक्ति के लिए जा सकता है, नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि कृष्ण भावनामृत जो है, ये भगवत धर्म जो है, बचपन से ही बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। अपने बच्चों को कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, सिनेमा देखने के लिए नहीं भेजना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि नाइस नरसिम्हा इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन, उसमें भेजना चाहिए भवानी माता जी के पास, है वो पढ़ाती है। देख कितना सुंदर बच्चों का एग्जीबिशन हुआ, कितना क्लासेस हुआ, समर कैंप है, सभी भक्तों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए। हमने देख के आश्चर्य, हमारे मंदिर में कितने कांग्रीगेशन है मगर बच्चे तो 30-40 आए हैं, बाकी कहां गए, वो भी अभक्त के लोगों के बच्चे आए, अपने बच्चे तो दिखे ही नहीं वहां पर, तो कितना शर्म की बात है। हम लोगों को उन लोगों को अलग अलग कामों में लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको छोड़ना। हमारा जीवन के बारे में सोचिए, हम अभी क्या कर रहे हैं, कितना आसक्त हैं, तो उनको कम से कम हमारा उनका जिंदगी तो सुधारना चाहिए अपने को। हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको बचपन से ही, नहीं होगा नहीं, उसको आचरित अभ्यास कराना चाहिए। और अभ्यास वेरे शिशु जथा कही क्रमे कही कथा, वो उसको बोलना नहीं आएगा मगर प्रैक्टिस करते 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 हरिनाम बोलेगा, हरे कृष्णा कहता कहता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, वो बोलेगा। इसलिए हमें इन सारे चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और कैसे इस प्रकार के गृहस्थ जीवन में हम लोग एंटेंगल्ड हो जाते हैं, इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक महत्वपूर्ण बात बतलाते हैं। इस प्रकार का जो गृहस्थ व्यक्ति है ना, वो जैसे रेशमी कीड़ा, जानते हैं रेशमी कीड़ा, वो क्या करता है अपना चारों तरफ धागा बनाता है। वो धागा इतना कठिन रहता है ना, वो पूरा धागा बना देता है, वो बाहर निकल नहीं पाता, अंदर मर जाता। तो गृहस्थ व्यक्ति वो आसक्ति का ऐसा बना के गट्ठा बना देता है चारों तरफ आसक्ति का। बच्चा बेटा, वो आगे लिखा है पुत्री को नहीं छोड़ सकता है पिताजी, हालांकि पुत्री उसके ससुराल में है, फिर भी जनक महाराज उसका उदाहरण है। सीता मैया जब भी छोड़ के जा रही थी, विरक्त चूड़ामणि जनक महाराज जैसे व्यक्ति भी रोने लग गए थे, पुत्री का बेटी का आसक्ति इतना है पिता के प्रति, ऐसा ऐसा आसक्तियां। और व्यक्ति क्या करता है, वो सबको घरा बना लेता है, और रेशमी की कीड़ा जैसा वो बाहर नहीं निकल पाता है, उस परिवार के अंदर अंधकूप के अंदर छटपटा के व्यक्ति मर जाता है। अगर हमें इससे बचना है तो महत कृपा की आवश्यकता है, केवल गुरु की कृपा से ही। यश प्रसाद भगवत प्रसादो यश प्रसादान नगति कुतोपी, केवल उनकी कृपा से ही हम इस प्रकार की जंजालमयी भव सागर से, गृहस्थ जीवन से निकल सकते हैं। हर एक जीवात्मा के लिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री, पुरुष के लिए जितना स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष उतना, हम सबको इससे अगर निकलना है तो गुरु की कृपा की आवश्यकता है, भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से शिक्षाओं को हमें लेना चाहिए। आगे की चीजों को आप लोग पढ़ सकते हैं सातवें स्कंद के छठा अध्याय में। हरे कृष्ण। श्रील प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी। कृपया आप लोग उठ के नहीं जाना चाहिए, पूरा प्रवचन का लाभ लेना है तो अंतिम जो अनाउंसमेंट वो सुनना है, नहीं तो आधा लाभ मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सर्वप्रथम हम हिज ग्रेस शास्त्र स्वरूप प्रभु का धन्यवाद प्रकट करेंगे, जिन्होंने बहुत सुंदर ही प्रहलाद महाराज के उपदेशों पर चर्चा किया। तो सभी भक्तगण एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।